ओम शांति। दादी को किसने किसने देखा है? बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि को हाथ उठाएं। दादी का मास चल रहा, अगस्त मास। दादी एक विशेष रतन थी, सामान्य व्यक्ति नहीं थी। बचपन से जब जन्म हुआ तो उनके फादर ज्योतिषी थे, दादी के फादर ज्योतिषी थे। जन्म होते बच्ची का हाथ देखा तो वो अपने वाइफ से कहा कि ये मीरा बनेगी, ये कन्या हमारे घर में नहीं रहेगी। बचपन से दादी बहुत मेधावी थी, हर बात में तेज, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी। जब मैट्रिक दादी ने किया नहीं, जब मैट्रिक में थी तो दिवाली के दिन छुट्टियां थी तो उनके फादर ने कहा, वो कृष्ण के भगत थे, कृष्ण की पूजा करती थी, कृष्ण से उनका बहुत प्यार था, तो उनके पिताजी ने कहा कि बच्ची आप बेटी आप कृष्ण की पूजा करती हैं, आपको भक्ति में बहुत रुचि है, तो यहां दादा सत्संग कराते हैं, आप जाया करो, छुट्टी है, घर में बैठी है। तो पिताजी के कहने से सत्संग में गई। बाबा ओम की ध्वनि लगा रहे थे, काफी लोग माताएं बहनें कन्याएं बैठी थी, ये भी जाकर के पीछे बैठ गई और ट्रांस में चली गई। साक्षात्कार हुआ और ट्रांस में दादी चली गई। सत्संग पूरा हुआ, सब लोग उठ करके चले गए, दादी बैठी है, ट्रांस में है, उनको तो पता नहीं है कि सब चले गए या बैठे हैं। काफी देर के बाद दादी नीचे आई तो देखा कि कोई नहीं है, केवल बाबा बैठा है, तो दादी चुप से चली गई। दादी को घर में साक्षात्कार होता था कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण के भगत थे, पूजा करते थे। तो दादी ने साक्षात्कार में बाबा को देखा था घर में, तो आते बाबा को देखा तो कहा, अपने मन में सोचा कि तो इनको हमने देखा है, और साक्षात्कार उनको हुआ, ट्रांस में गई, और क्योंकि फर्स्ट टाइम बाबा से के पास आई थी तो बाबा को अनुभव सुनाने की हिम्मत नहीं थी, चली गई। फिर दूसरे दिन आई तो बाबा ने दादी को परख लिया कि नहीं, ये कन्या दिव्य कन्या है, और रोज आने लगे। और एक ही बार दादी को साक्षात्कार हुआ, ट्रांस में गई, लेकिन दादी बाबा की मुरली की बहुत रुचि से सुनती थी, ध्यान से सुनती थी, और बाबा जो कहते थे वो पूरा 100% जीवन में उतारती थी। ऐसे ने सुन लिया, अच्छा लगा, किसी का क्लास अच्छा लगा, मन खुश हो गया, लेकिन जीवन में नहीं उतारा। एक बार अब एक बाप दादा ने, हम लोग जब मिल रहे थे मधुबन वाले, तो बाबा ने कहा कि आप लोग सुनते बहुत हो, हर मुरली सुनते हो, लोग आते हैं तो एक मुरली सुन के चले जाते हैं, आप लोग हर मुरली सुनते हो, जीवन में इसको उतारना है। तो बाबा ने मिसाल दिया कि मान लीजिए कि ब्रह्मा भोजन, आपने बहुत पौष्टिक भोजन तैयार किया है और आपके लिए ब्रह्मा भोजन है, दादियां सब बैठी है, आपके लिए भी थाली आ गया, जब तक वो ब्रह्मा भोजन अंदर स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको ताकत आएगी। पौष्टिक है, ताकत वाली है, लेकिन वो ताकत आएगी नहीं आएगी, वो थाली में है। हम उसको स्वीकार करते हैं, वो मेरे नाम से है, कौन से नहीं है, लेकिन जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तब तक ताकत नहीं आएगी। सुनते हैं लेकिन उसके हम स्वरूप बनेंगे तो हम वैसा बन जाएंगे। तो हम सुने, स्वरूप बनते जाएं। दादी, दादी कैसे बन गई, तो यज्ञ में आई तो बाबा धीरे धीरे बाबा के नजदीक आई तो पढ़ाई छोड़ दिया, बोर्डिंग बनी दिवाली के दिन, और दादी फर्स्ट कन्या थी को समर्पित हुई। और दीदी दादी से पहले समर्पित हुई थी, लेकिन कन्याओं में फर्स्ट कन्या थी जो यज्ञ में समर्पित हुई। और दादी की जो सेवाएं थी, विशेषताएं थी, बाबा को बहुत अच्छा लगा, तो दादी को चांस मिलता गया। और यज्ञ में अनेक प्रकार की सेवाएं, बाबा को कोई ख्याल चलता था तो दादी को बुलाते थे, दादी को सेवा देते थे। बेगरी पार्ट में भी दादी का भी बहुत अहम रोल रहा। हम कराची से इंडिया में आए तो भी दादी का अहम रोल रहा। बाबा को कुछ अगर ये कराना था, मम्मा बाद में आई है, हालांकि स्कूल में दादी अज्ञान काल में जैसे मम्मा को भी पता नहीं था सत्संग के बारे में, बाबा के बारे में, दादी को भी नहीं पता था, तो दोनों पढ़ने लिखने में होशियार थी, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थी, तो आगे आगे दोनों मम्मा और दादी एक ही बेंच पर बैठती थी। दोनों को आपस में दोस्ती फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। लेकिन दादी पहले आई, मम्मा पीछे आई, तो दादी आगे बढ़ती गई। फिर मम्मा का भी कहानी है कि मम्मा के फादर की डेथ हो गई किसी कारण से, और उनकी लौकिक मदर को बहुत धक्का लगा, बहुत ये हुआ, तो सारा दिन रोती रहती थी क्योंकि कोई भाई नहीं, कोई ये नहीं, कमाने वाला नहीं, और जो बिजनेस था उसमें नुकसान हो गया। तो पहले बॉम्बे में मम्मा और उनके फैमिली माने उनके मदर फादर रहते थे, बिजनेस था, फिर उनकी डेथ होने के बाद वो लोग आ गए पाकिस्तान में, क्योंकि रिश्तेदार पाकिस्तान में होते थे। तो मम्मा स्कूल जाया करते थे, मदर उनके घर में रहती थी, रोती थी, दुखी रहती थी, मम्मा कुछ कर नहीं सकती है। तो दादी जब यहां आई तो थोड़े दिन के बाद उन पिता को कहा कि मैं पढ़ाई अब नहीं पढ़ूंगी, बाबा के पास रहूंगी। तो पिता को तो पहले ही पता था कि ये मीरा बनेगी, हमारे घर में नहीं रहेगी, तो बोला कि बेटी आपको जहां अच्छा लगता है वहां रहो। पिता ने छुट्टी दे दिया। सबको बंधन आया, अरंट आया, सबको ये हुआ, घर जाना पड़ा, लेकिन दादी कभी घर गई नहीं दोबारा। एक बार आ गई, दोबारा घर नहीं गई। देखो विशेषता। और जब यहां 51 में आए तो बेगरी पार्ट, भाई कितना भी बड़ा कुआं हो अगर उसमें आमदनी ना हो तो कुआं भी खुट सकता है ना, खुट जाता है ना। तो बाबा दादी को सेवा पर भेजते थे, यहां जाओ वहां जाओ। तो दादी जबकि कोई स्थान नहीं था, कोई सेंटर नहीं था, दादी जाती थी, दादी क्लास कराती थी। का रोल था, फर्स्ट जापान में विदेश से निमंत्रण आया तो बाबा ने दादी को, रतनमणि दादी को और आनंद किशोर दादा को भेजा था, और दादी वहां इतनी अच्छी सेवा किया। ये 8 दिन के लिए गई थी, 3 मास तक दादी को उन लोगों ने कहा कि नहीं दादी यहां रुको, तो बाबा से पूछती थी, बाबा कहते नहीं सेवा है बच्ची तो वहां रुक के सेवा करो। फर्स्ट टाइम, लेकिन दादी की अपनी विशेषता थी। फिर 3 मास के बाद दादी भारत लौटी तो बाबा ने एयरपोर्ट से सेवा पर भेज दिया, यहां सेवा है बच्ची, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। तो कहने का कि दादी को कभी यज्ञ में बाबा बहुत दिन तक रहने नहीं देता था, आती थी 4 दिन के बाद बाबा भेज देता था। और दादी दीदी का आपस में बहुत फ्रेंडशिप था, मम्मा की अलग जीवन कहानी है, उसको हम टच नहीं कर रहे हैं। तो ये दादी दीदी का जोड़ी था। दादी जहां नया नया सेंटर खुलता था वहां बाबा भेजते थे, बिहार में, पटना में, कदम कुआं में, जालान बाबू के पास दादी काफी टाइम रही। और फिर बाबा ने वहां से बुलाया बॉम्बे, और बॉम्बे से पार्टी लेकर के दादी आई थी। बॉम्बे से पार्टी लेकर आई थी, 3 दिन में पार्टी रिफ्रेश हुई, पार्टी चली गई, जा रही थी तो दादी बोली कि बाबा, बाबा ने कहा बच्ची अगर कोई विशेष सेवा नहीं है तो आप रुको। दादी को पहली बार बाबा ने कहा कि आप रुको, दादी को हैरानी हुई कि आज बाबा पहली बार खुद कहता है। हम कहते हैं कि बाबा एक दिन और रुक जाएं, तो बाबा बोलते हैं अरे बच्ची बादल भर गया अभी जाके बरसो, एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकने नहीं देता था। आज बाबा बोलता है कि बच्ची पार्टी को भेज दो आप रुको। और दादी को बाबा ने रोका। और दीदी यज्ञ की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी मम्मा के बाद, तो मम्मा को इलाहाबाद में भेज दिया, क्योंकि दीदी थोड़ा, दादी से उम्र ज्यादा था और दीदी थोड़ा बीमार भी थी ब्लड प्रेशर के कारण। तो इसमें भी बहुत राज था, क्योंकि दीदी देख नहीं सकती थी, बाबा अव्यक्त हो रहा है दीदी देख नहीं सकती थी, इतना बाबा से उनका स्नेह था। तो उनको दूर भेज दिया इलाहाबाद, बच्ची बहुत संत आए हैं इलाहाबाद मेले में आप जाओ सेवा करो। तो बाबा ने कहा तो दीदी चली गई और दादी यहां रुक गई। 16 जनवरी की बात है, पार्टी 16 को गई, 17 जनवरी को बाबा ने दादी का हाथ पकड़ करके सारा डिपार्टमेंट दिखाया। दादी सोच रही है कि मुझे रहना नहीं है, मुझे ये संभालना नहीं है, बाबा मेरे को क्यों दिखा रहा है, मन में सोच रही थी। कारपेंट्री ये वो, कहां कारोबार के हैं, कहां कपड़े रखे हुए हैं, कहां अनाज रखा हुआ, हर चीज दादी के ध्यान में दिया। दादी समझ नहीं पा रही थी अंदर अंदर, बाबा से पूछ भी नहीं सकती थी बाबा ये सब क्यों दिखा रहे हो। लेकिन बाबा को यज्ञ को दादी के हैंड ओवर करना था। 18 तारीख को बाबा की तबीयत तो थोड़ी नाजुक थी ही थी, 18 तारीख को बाबा की तबीयत थोड़ा ज्यादा नाजुक थी, तो दादी ने कहा बाबा तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आप रेस्ट करो और जो आपने लिखा है आप मुझे दे दीजिए, हम जाकर के सुनाएंगे सुबह मुरली वो सुना देंगे। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची ठीक है। तो बाबा जो नोट्स तैयार किए थे सुबह चिंतन किए थे वो दादी को दे दिया। दादी जाकर के सुनाया, मुरली सुनाया, क्लास पूरा किया। फिर बाबा के पास आई तो बाबा ने बोला कि बच्ची जितने भी पोस्ट आए हैं पेंडिंग है वो मेरे को दो, बाबा लिखेगा। एक दिन में 150 पोस्ट बाबा ने लिखा, सब किसी का रखा नहीं, सब जो भी पोस्ट आए थे उसके जवाब दो लाइन में सबको दिया। शाम का टाइम में दादी को बुलाया और कहा कि आज बाबा सुबह मुरली नहीं चलाए हैं तो बच्चों को संकल्प चलता होगा कि बाबा को क्या हो गया, आज बाबा मुरली नहीं चलाया है। बाबा को मुरली से इतना प्यार, तबीयत थोड़ा नरम ही थी, लेकिन दादी को बुला करके कहा कि दादी आप बच्चों को अनाउंसमेंट करिए कि जल्दी भोजन कर लें और बाबा जल्दी क्लास कराएगा। पहले ऐसे 9 बजे होता था तो उस दिन 7 बजे भोजन लोगों ने कर लिया, 8:30 क्लास में आ गए। बाबा आए, क्लास कराया और क्लास करा करके उस दिन ऐसे बाबा कभी पीठ दे करके, जैसे हम लोग निकलते हैं दरवाजे से तो मुंह उधर होता है, पीठ हॉल के तरफ होता है, बाबा कभी भी मुंह उधर करके दरवाजे से नहीं निकलते थे। बच्चों को दृष्टि देते देते जैसे पीछे से चलते हैं वैसे दृष्टि देते देते बाबा जाते थे। 18 जनवरी को बाबा मुरली चला करके गेट पर यहां कहा कि निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बच्चे बनना है, लास्ट महावाक। वहां जाकर के बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, बाबा छुट्टी लेता है। अब ये किसी को ख्याल नहीं आया कि बाबा छुट्टी लेता है, ये पहली बार क्यों ऐसे बोला। ठीक है बाबा बोला, सुने बच्चे। बाबा बाहर निकला तो दादियां साथ साथ गई। बाबा की तबीयत तो ठीक नहीं थी, हार्ट की थोड़ी तकलीफ थी, शुगर था, तो बाबा को छोड़ने रूम में गए तो बाबा अपने चारपाई पर बैठ गया, पांव नीचे लटका हुआ है और सामने दादियां हैं, बीच में बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि। तो दादी प्रकाशमणि को हाथ में हाथ दिया, दृष्टि दे रहा है, बहुत पावरफुल दादी को दृष्टि मिल रही है। दादी खुद समझ रही है कि इतना पावरफुल तो आज तक बाबा ने हमको दृष्टि नहीं दिया है, सकाश नहीं दिया है, और आंखें खुली है, दादी को दृष्टि दे रहे हैं बाबा। और थोड़े देर में दादी देख रही कि बाबा का हाथ जो गर्म था ठंडा हो गया, बर्फ जैसा हो गया, आंखें खुली है, बाबा बैठा दे रहा है, हाथ ठंडा हो गया, बाबा चला गया दृष्टि देते देते, लेकिन दादी को एहसास नहीं होने दिया। भाई कोई जाता है तो झटका आता है, कुछ आता है, दादा बाबा को कुछ नहीं, हाथ में हाथ है, लेकिन दादी को हाथ ठंडा लगा तो दादी को शक हो गया कि भाई हाथ एकदम बर्फ जैसा क्यों हो गया, अभी तो गर्म था एक सेकंड में। तो दादी समझ गई कि बाबा नहीं है, दृष्टि दे रहा है, तो बाबा को लेटा दिया और बोल डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आकर के देखा, बोला कि बाबा तो है ही नहीं है, बाबा तो चला गया। अभी दादी पहली बार यज्ञ में आई है, माने रुकी है, यज्ञ का कारोबार बाबा ने दिखाया बताया समझाया, लेकिन इतनी पावर दिया था कि दादी पहली बार रुकी है तो इंसान घबरा जाए ना, आंसू आने लगे ना, दादी को एक ड्रॉप आंसू नहीं आया। जो और लोग खड़े थे उनको आंसू आया तो वो दादी ने कहा कि नहीं बाबा हमारे साथ है, गया नहीं है, किसी को आंसू नहीं बहाना है, सबको बांध करके रखा और लोगों को फोन करना शुरू कर दिया। आज तो मोबाइल है, मोबाइल में एक सेकंड में कहां किसका फोन होता था, एक यीशु दादी के ऑफिस में, एक निर्भय भाई का ऑफिस में, यज्ञ में दो फोन होता था, लैंडलाइन, कॉल बुक करना होता था, कहां करनी है तो कॉल बुक करना होता था। ऑपरेटर को पता लग गया कि बाबा इनके नहीं है, इसलिए फ्रिक्वेंट बात हो रही है, तो सहयोगी तो सब बन जाते हैं मौके पर, तो एक एक मिनट में लगा कर दे देता था। तो दादी जिसको भी फोन करे, जगदीश जी को फोन किया क्योंकि ये सीनियर ब्रदर हैं, तो जगदीश भाई बोले कि दादी आप तो मधुबन में रहते नहीं हो, आप तो बॉम्बे में रहते हो, मधुबन की बातें कर रहे हो। और तो नहीं भाई साहब, नहीं जगदीश जी, हम आए थे पार्टी लेकर के, बाबा ने पार्टी को भेज दिया, मेरे को रोक दिया और ऐसे ऐसे हुआ। तो जगदीश भाई बोलते हैं सच बोल रही है? हां जी सच बोल रही हूं। लोगों को विश्वास न हो, दादियों को फोन करें तो दादियां बोले कि इस तरह के मजाक किया जाता है क्या, दादी आप इस तरह के मजाक कर रही हो, बाबा चला गया, बाबा कैसे जाएगा बच्चों को छोड़ करके, ये हो ही नहीं सकता है, क्या बात कर रही है, और इतना अथॉरिटी से रो नहीं रही है, कुछ आवाज में बदली नहीं हुआ है, नहीं तो चलो आंसू नहीं आया, आवाज तो भारी हो जाए, लेकिन दादी में इतना बाबा ने पावर भर, शक्ति भर दिया था, दादी जरा भी ये नहीं किया। और सबको भी बताया, दीदी बोलते क्यों आई इस तरह से मजाक करती है आप, बोला नहीं दीदी सच बोल रही हूं, बाबा अव्यक्त हो गया। तो दीदी वहां से आई, सब लोग आए, बाबा को हिस्ट्री हॉल में रखा गया, 3 दिन तक बाबा हिस्ट्री हॉल में था। शिव बाबा ने संदेश दिया कि नहीं इनको क्रिमिनेशन ग्राउंड में नहीं ले जाना है, परिक्रमा शहर को जरूर लगाना है ताकि लोगों को पता पड़े, वाइब्रेशन जाए। परिक्रमा लगा करके 21 तारीख को दोपहर लाया गया और शांति स्तंभ जो बना है वो बाबा का प्ले ग्राउंड था, वहां क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, वहां बाबा को अंतिम संस्कार, बाबा शिव बाबा ने आदेश दिया तो घर में कभी संस्कार नहीं होता है, फिर कलेक्टर से परमिशन लिया गया, कलेक्टर ने परमिशन दिया, जो बाबा का संदेश आया उस अनुसार से दादी जी ने उस विधि से किया। संस्कार के पहले सब दादियां आ गई थी, गुलजार दादी भी आ गई थी, तो गुलजार दादी को दादी ने, क्योंकि सब दादियों से तो फ्रेंडशिप थी, बचपन से यज्ञ में रहते थे, तो दादी को भेजा कि जाओ गुलजार आप बाबा से पूछ के आओ आगे क्या करना है। बाबा ने एक एक डायरेक्शन श्री बाबा ने दिया और उस डायरेक्शन प्रमाण बाबा को अंतिम संस्कार किया गया। बाबा के पर्सनल संदेशी संतरी दादी थी, संतरी दादी को आप लोगों ने देखा है, संतरी दादी विश्व किशोर दादा की वाइफ युगल, बड़े भाई के लड़के थे, इतना दादी ये थी, एक सेकंड में बाबा के पास चली जाती थी, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते थे, लेकिन बाबा को कुछ काम करना होता था तो दादी को फट से भेजते थे, बाबा से पूछ के आओ ये करना है, बाबा को पूछ के आओ यहां जाना है, बाबा से पूछ के आओ, दादी एक एक मिनट में दादी जाया करती थी, संदेश लाती थी। वो अलग एक चैप्टर, वो शुरू करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो दादी अब, लेकिन किसी को भी, कोई इतने लोग आए किसी को आंसू नहीं बहाना है। बाबा यहां है, बाबा हमारा है, बाबा यहां है, गया नहीं है। सबको इतना पावरफुल, नहीं तो भावना में आकर के दादियों कभी आंखें गिली हो जाए, स्वाभाविक है। लेकिन दादी इतना से इतनी बाबा ने पावर भर दिया था कि दादी को जरा भी ये नहीं। और फिर 21 तारीख को बाबा का अंतिम संस्कार करके, जैसे अपने नियम है, सारा धुलाई सफाई करके भोजन बना, तो भोग के लिए गुलजार दादी को बुला। दादी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं गुलजार, आपको जाना है। तो दादी गई भोग लेकर के, तो बाबा आ गया। शिव बाबा आया, कहा कि आज बच्चे को लेकर के नहीं आया हूं, क्योंकि आप लोग जान नहीं दोगे। बीच में बाबा एक बार आए और बाबा ने आकर के डायरेक्शन देकर के फिर बाबा गए। 21 तारीख को भी बाबा अकेले आया, शिव बाबा। ये दो बार बाबा, शिव बाबा अकेले आए संदेशी के तन में, और आकर के सारा डायरेक्शन 21 तारीख को भोग पर दिया, कैसे यज्ञ चलेगा। दीदी दादी मिल करके यज्ञ चलाएगी, दादी मुरली सुनाएगी, दीदी यज्ञ के अंदर का कारोबार देखेगी, दादी बाहर का कारोबार देखेगी। एक एक डायरेक्शन दिया, और कोई भी किसी को ये फीलिंग नहीं होगा बाबा नहीं है तो किससे मिलेंगे, नहीं, ये दीदी दादी दोनों बाबा की भाषणा देगी। और तब से पार्टियां आती गई, आप लोग भी आए होंगे, मिले होंगे, लेकिन दादी और दीदी से ऐसी भाषणा मिलती थी जैसे इनमें बाबा बैठा है। किसी को ये फील नहीं होने दिया। दुनिया वालों को तो बहुत ये हुआ कि अब इनका बाबा चला गया, इनका संस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाबा ही नहीं रहा तो कौन इनका रहेगा, कौन इनको ये गाइड करेगा, कहां से करेगा। लेकिन नहीं, बाबा को तो सेवा करानी थी। तपस्या करके बाबा अपने आप को इतना संपन्न बना लिया था कि करण करावन हार करवा रहा है बच्चों से, करावन हार बच्चों से करा रहा है। तो अपने आप को अव्यक्त कर दिया और बच्चों को सामने लाया, और अपना काम हमारी दीदी दादी करने लगे। यज्ञ में जो भी सेवाएं साकार, बाबा के टाइम 100 के लगभग सेंटर होंगे, दादी 100 सेंटर से अपने जीवन काल में 8000 सेंटर बनाया। पूरे विश्व में 145 कंट्री में, भल विदेश की सेवा के निमित्त हमारी जानकी दादी रही, लेकिन दादियों में इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना एक दूसरे के लिए रिगार्ड, रेस्पेक्ट, वंडरफुल। बेकरी पार्ट था, आज तो सब साधन है, बेकरी पार्ट था। उन दिनों में 72 की बात आपको सुना रहे हैं, बारिश का दिन, उन दिनों में इतनी बारिश होती थी कि 15 दिन तक बारिश, धूप, सूरज है या नहीं है पता ही नहीं लगता था, कंटिन्यू बारिश होती थी। बेकरी पार्ट था, लकड़ी कहीं शेड नहीं था कि लकड़ी रखा जाए, खाना पकाने वाला लकड़ी पहाड़ पर लकड़ी है, सारा टाइम बारिश हो रही है, लकड़ी एकदम पानी चूस लिया है, फूल गया है पानी से। उस लकड़ी को हम लोग खाना बनाते थे, और कच्चा चूल्हा था उसके चूल्हे पर रखते थे, उसके आग से वो लकड़ी शाम तक सूख जाता था, शाम को भोजन उस लकड़ी से बनाते थे। फिर शाम का भोजन बन गया तो रात के लिए वो गीली लकड़ी ला करके रखते थे, फिर वो सूख जाता था तो सुबह का भोजन बनता था। इस तरह से बेकरी पार्ट, एक बार हमारे को सूरज भाई ने कहा कि आपको सुबह का चाय बनाना है। अब 3 बजे लोग उठ के आ जाते हैं, उनको चाय चाहिए तो मुझे 2 बजे उठना पड़ेगा। मैं 2 बजे उठ करके आया, चूल्हा फूंक रहा हूं, इतनी लकड़ी गीली थी वो जले नहीं, करे क्या, जलाना है। फूंक फूंक करके आंखें लाल हो गई धुआं से। चाय बना दिया टाइम पर, गुरुवार का दिन, भोग भी बनाया, कपड़ा चेंज करके, दीदी दादी अमृत पिलाती थी, आजकल तो अमृत का पूरा हो गया, बड़ा परिवार हो गया, तो दीदी दादी अमृत पिलाती थी। तो मैं दीदी के पास गया, दीदी ऐसे बैठी थी संधली पर, ऐसे सोफा नहीं था, सोफा का तो नाम निशान नहीं था, दीदी संधली पर बैठी थी। तो मैं बैठ करके और ऐसे मुंह करके, तो दीदी मेरे सिर पर हाथ रख करके अमृत पिलाया और कहा, भाऊ आपके आंख लाल है। हम बोला कि दीदी आज चूल्हा जल नहीं रहा था, फूंक फूंक करके धुआं आंख में लग गया इसलिए लाल हो गया। दीदी बोलती है, नहीं सेवा करनी है लेकिन अपनी संभाल भी करनी है, मां की तरह प्यार। नहीं तो हम लोग बच्चे मेडिकल में पढ़ करके आए थे, डॉक्टर, चूल्हा का काम करे कभी देखा नहीं था, खाना कैसे बनता था कुछ पता भी नहीं था, लेकिन यज्ञ में आकर के दीदी दादी का इतना प्यार कि आदमी सब कुछ भूल गया। तो दादी एकदम परिवार की तरह, पार्टियां आती थी, 3 बजा है, मुन्नी बहन बोलती थी दादी चलो अब 3 बज गया है। दादी का रूम होता था अपने छोटे हॉल, हिस्ट्री हॉल के कोने पर, अभी भी वही है। तो 3 सीढ़ी होता था ब्रांडे में चढ़ने के लिए हॉल के, तो जैसे ब्रांडे पर जाती थी, सीढ़ी पर जाती थी तो सामने गेट दिखाई देता था। पार्टी आ रही है तो दादी मुनि को बोलती, मुनि चलो मैं आती हूं 2 मिनट में आती हूं। उनको पता लग जाता, अरे दादी मैं शाम को मिला दूंगी आपको, आप चलो। अतः नहीं मुनि आप चलो मैं आती हूं, पार्टी को हाथ हिला देती थी, पार्टी रिफ्रेश खुश। अभी उनको चाय भी नहीं मिला है, उनको बिस्तर भी नहीं मिला है, बिस्तर होता नहीं था पहले, अपना अपना बिस्तर लोग ले आते थे और रूम में अपना बिस्तर लगाते थे। पंजाब से ग्रुप आता था तो पंजाब में मोटे मोटे रजाइयां होती थी और उनके बिस्तर होते थे, हम लोग उठा करके उनके रूम में ले जा करके छोड़ करके आते थे, कोई नौकर नहीं कोई ये नहीं, यज्ञ का काम हम सब करते थे। तो मतलब दादी दीदी ने इतना पालना दिया, यज्ञ को संभाला, सारे ब्राह्मण परिवार को बांध करके, स्नेह में बांध कर रखा, लेकिन शक्ति स्वरूप भी थे, कोई गलती हो जाए दादी छोड़ती नहीं थी, पनिशमेंट देना है लेकिन मुख से नहीं देना, उनकी आंखों से सब कुछ मिल जाता था। एक बार की बात है, मैं घर गया था, 1 दिन लेट आया, मीटिंग चल रही थी तो 11 बजे मीटिंग में नाश्ता दिया जाता है, तो हम प्लेट ट्रे लेकर के दादी के पास गया, दे रहा था सबको। तो दादी बोलती है, मेहमान बन करके आया है 1 दिन लेट, मेहमान बन करके आया है, वो दिन और आज दिन जो कह करके जाते हैं उसी डेट पर आ जाते हैं। इतना शिक्षा देती थी, डांटा नहीं कभी, जिंदगी में दादी की आवाज नहीं सुना, लेकिन डिसिप्लिन, मर्यादा एकदम एक्यूरेट। दादी होती थी मास में 3-4 बार पिकनिक कराती थी। दादी चली गई तो दादी के बाद कोई पिकनिक नहीं हुआ। दादी बोलती थी कि एक ही पहाड़ी पर रोज हमको ले जाते हो, पहाड़ी देख करके आओ, चेंज करो, दूसरे दूसरे पहाड़ी पर हम चलेंगे। दीदी के घुटने में दर्द होता था, दादी दीदी बोलती दादी मैं नहीं जाऊंगी। नहीं दीदी आप चलो। गुरु शिखर पिकनिक रखा, अभी दीदी गुरु शिखर ऊपर चढ़ नहीं सकती है। दीदी को हम लोग चेयर पर ले गए, वहां फ्लैट पहाड़ी है, वहां दरी बिछा दिया। बारिश इतना आई कि दरी को उठा करके हम सब लोग एक ही है कि उसको छतरी बना दिया। दरी से पानी गिरने लगा, सब गीले हो गए। दीदी को फिर से चेयर पर नीचे लाए और हम लोग गाड़ी में बस में बैठे और बस में दादी पिकनिक करा रही है। मैंने इतनी पालना का संस्कार, बेगरी पार्ट था। मक्खन मानी दादी, जैसे बाबा ने पालना दिया था तो वो सरकार में दादी हर ग्रुप को मक्खन मानी। सिगड़ी हम लोग कोयले का जला देते थे, 2-4 माताएं बैठ जाती थी, इतनी छोटी छोटी रोटी बनता था, सेक करके हम लोग देते थे, उस पर मक्खन भूरा डाल करके दीदी एक एक को मुख में खिलाती थी। इतना प्यार है, बेगरी पार्ट, लेकिन प्यार में कमी नहीं है। लोग इतने प्रभावित हो जाते थे, इतने ये हो जाते थे। हर गुरुवार को ब्रह्मा भोजन होना ही होना है। हिस्ट्री हॉल में कहीं डाइनिंग हॉल तो था नहीं, जो आप देखते हैं रेलवे का जो ऑफिस पांडव भवन में और रतनमणि दादी का ऑफिस, और ये बरांडा था। इस बरांडे में भोजन करते थे, बेंच लगा होता था। जब ज्यादा पार्टियां आती होती तो बेंच निकाल करके जमीन पर बैठा करके भोजन कराया जाता था। लेकिन दादी इतना सबको प्यार, मुरली में नचा देती थी, मुरली से उनका बहुत प्यार। लेकिन दादी को एक तकलीफ था, कमर में दर्द हो जाए। अचानक काम कर रही है, पोस्ट लिख रही है, क्लास करा रही है, अचानक दर्द शुरू हो गया। वो 3 दिन तक हिलने नहीं देता था, पता नहीं क्या हिसाब किताब था। जब दर्द शुरू होता था तो मेरे को बुलाती थी कि एक पुड़िया खिला दो, मुन्नी को पता नहीं लगे, नहीं तो जाने नहीं देगी, हिलने नहीं देगी, बिस्तर पर बैठा देगी, वो मुरली सुनाने नहीं देगी, एक पुड़िया खिलाओ। और दादी मफलर होता है ना गले में, हम लोग भाई लपेटते हैं, उस मफलर से कमर को बांध करके मुरली सुनाने जाती थी। इतना मुरली से दादी को प्यार था। तो दादी सर्दी के दिन है, पार्टी आई है, स्वेटर नहीं लाए हैं, गर्म कपड़े, अभी बॉम्बे से लोग आते हैं तो उनके पास स्वेटर तो होता ही नहीं है क्योंकि बॉम्बे में गर्मी ठंडी होती ही नहीं है। तो वो आए हैं, ठंडी लग रही है, मुरली के बीच में बोलेगी, मुन्नी जितने शॉल है, जितने खेस है, सब लाओ, हम भाइयों को बहनों को देंगे। इतनी बड़ी दिल थी, मां की तरह पालना देती थी। बाबा और दादी में अंतर नहीं। तो यज्ञ को दादी ने यहां तक लाया, उतना ही पालना, उतना ही प्यार, लेकिन डिसिप्लिन में उतना ही। दादी ये थी। तो कहने का मेरा भाव ये था कि दादी, एक बार की बात है कि बाबा आए हुए थे, पार्टियों से मिल लिया, दादी से मिल रहे थे, तो दादी को कहा बाबा ने कि बच्ची आपको ध्यान नहीं आता है, बच्चे बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो उनके रहने का व्यवस्था आप कुछ करिए। तो दादी बोलती है कि बाबा यहां कंस्ट्रक्शन बैंड है, मकान मिलते नहीं है, जमीन मिलते नहीं है, हम क्या करें। बाबा ने कहा कि मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अब पुरुषार्थ करो। कह करके बाबा गए। दूसरे दिन ये सालगांव वाले दूध लेकर के, जब 51 में बाबा आए तब से दूध ये देते हैं। दूसरे दिन ये दूध वाले आए तो बोलते हैं कि हमको दादी से मिलना है। अरे भाई क्या काम है बताओ, दादी को हम बोल देंगे, काम कर देंगे। अतः नहीं, मुझे काम कुछ नहीं है, दादी से मिलना है। दादी को जाकर के सुनाया, दादी आज दूध वाले बोलते हैं कि नहीं हम दादी से मिलेंगे। तो दादी बोलती है कि बिजी थी, लेकिन बोलती है कि नहीं नहीं बुलाओ बुलाओ, ये बेचारे कभी मिले नहीं है, दादी मिलेगी। और दादी से मिलने आए, दादी के पास आए तो दादी को कहा, दादी मेरे घर में बच्चों की शादी है, ये थोड़ा हमारा जमीन है, इसको मुझे बेचना है। तो मेरे को दिल में आया कि नहीं पहले बाबा को देंगे, अगर यज्ञ नहीं लेगा तो हम मार्केट में जाएंगे और होटल वालों को देंगे। तो दादी देखो, रात को बाबा से बात हो रही है, सुबह बिना बुलाए वो दूध वाले रोज दूध दे के चले जाते हैं, दादा विश्वरतन उनको पैसा देता था, और आज बोलते हैं कि नहीं हम दादी से मिलेंगे। दादी ने बोला, मैं था, बल्लभ भाई थे, ताराचंद भाई थे, भोपाल भाई थे, हम चार पांच को भेजा कि इनके साथ जाओ, इनके जमीन देख करके आओ। हम लोग आए, देखा यहाँ कोई झाड़ नहीं है, कटीली झाड़ियां थी, कांटे थे, जैसे सूरज भाई बताया कि सांपों को और इसका अड्डा था, कहीं खड़ा होने का जगह नहीं था, कोई पहाड़ी समतल नहीं थी जहां बैठे। हम लोगों को तो पसंद नहीं आया, यहां लेके करेंगे क्या। तो जाके दादी को सुनाया कि दादी ऐसे ऐसे बात है, वहां बैठने की खड़ा होने की कोई समतल पहाड़ी नहीं, खंडहर है। दादी बोली कि हमको दिखा सकते हो। हम बोला कि दादी वहां पैदल बहुत चलना पड़ता है, रोड है, उसके बाद बहुत पगडंडी है, अभी तो रोड बन गया, इसकी भी कहानी है, तो पगडंडी है माने चलने की एक आम रास्ता है, उसमें आप कैसे जाएंगे। दादी बोली कि तुम लोग क्या समझते हो दादी को, आप लोग जा सकते हो, दादी नहीं जा सकती है, दादी जाएगी। दादी ने आई, पैदल चल करके आई, और यहां खड़े होकर के, जहां पीस कॉटेज के कॉर्नर है वहां खड़े होकर के 10 मिनट तक इतना पावरफुल दृष्टि दिया, और फिर बोला कि नहीं ले लो। देखो दादी का विजन, ले लो। दूसरे दिन रजिस्ट्री हो गई। अब इतना बड़ा इसका नक्शा कौन बनाए, कोई नक्शा बनाने के लिए तैयार नहीं। चलो नक्शा वो अहमदाबाद से आर्किटेक्ट को बुला करके बनवा भी लिया, अभी नक्शा पास करने के लिए तैयार नहीं, क्या करेंगे। गवर्नर आए थे, गर्मियों का दिन था, गवर्नर आए थे, बच्चों का प्रोग्राम बाल शिविर होता है गर्मियों में, सब बच्चे आते हैं, उनका प्रोग्राम 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक होता है। दादी ने कहा कि गवर्नर साहब आए हैं, सामने पांडव भवन के सामने गवर्नर रहते हैं, तो आप लोग गवर्नर को बुलाओ, बच्चों के शिविर का उद्घाटन उनसे कराना है। तो चन्ना रेड्डी गवर्नर थे, गए तो उन्होंने हाँ कह दिया, बोला कि हाँ मैं तो यहां कुछ फ्री हूं, मैं आऊंगा, ऐसे भी पांडव भवन नहीं देखा हूं, मैं आऊंगा। आए चन्ना रेड्डी गवर्नर, शाम के टाइम में सारे बच्चे बैठे थे, कोई हील नहीं रहा था। तो चन्ना रेड्डी बोले कि दादी बच्चे तो तूफान मचाते हैं, हिलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ये सारे बच्चे हिलते नहीं है, क्या आपने जादू किया है। तो गवर्नर था, यहां गवर्नर यहां दादी बैठे, तो दादी ने कहा कि जादू नहीं हुआ है, ये बच्चे मेडिटेशन करते हैं, 3:30 बजे सब बच्चे उठे हैं और मेडिटेशन करते हैं। तो चौंक गया, बोला कि मेडिटेशन क्या होता है। तो दादी स्टेज पर ही उनके कान में बता रही है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा शिव बाबा है, उनको याद करना यही मेडिटेशन है। तो बोला कि हमको भी सिखाएंगे? बोला कि हाँ। तो बोला कि कल से मैं रोज आऊंगा। दादी ने कहा कि नहीं, आप रोज आएंगे, शहर वाले कहेंगे कि पता नहीं ब्रह्मा कुमारियों को क्या हो गया, रोज गवर्नर जा रहा है। तो हमारे बच्चे जाएंगे, हमारी बहनें जाएंगी। देखो दादी को कितना विजन। तो वो हमारी शीलू बहन और उषा बहन दोनों जाकर के कोर्स कराया। 7 दिन के बाद गवर्नर ने अपना जो उनका बेडरूम था उसको बाबा का कमरा बना दिया 7 दिन में। बोला दादी हमारे यहां राजभवन में आओ, उसको उद्घाटन करो। दादी गई, उद्घाटन हुआ। फिर गवर्नर को तो जयपुर जाना था, उसका टाइम पूरा हो गया, 20-25 दिन के लिए आते हैं। तो आया तो बोला कि दादी मुझे काम दो, आप इतना यज्ञ सेवा करते हो, मुझे भी कुछ सेवा दीजिए। दादी ने कहा कि आपका यज्ञ है, आप जो चाहिए वो करिए। बोला कि ऐसा नहीं, मुझे पर्टिकुलर काम दो। तो एक हम जमीन लिए हैं, उसका नक्शा बन गया है लेकिन कोई पास नहीं कर रहा है। तो बोला कि ये काम मेरा है, मेरे को दे दो। गवर्नर ने नक्शा लिया, गया जयपुर। भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर थे, उनका ये था। दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर का ये हो गया, गवर्नर का रूल आ गया, चीफ मिनिस्टर रिजाइन देना पड़ा, कुछ हुआ होगा। गवर्नर का ये हो गया, तीसरे दिन सारे सेक्रेटरी को बुला करके और गवर्नर हाउस में मीटिंग किया, ये नक्शा पास करना है। सारे सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सब बोल दिए सर ये हो ही नहीं सकता है। गवर्नर ने बोला कि इसको पास करना है, अभी गवर्नर के बाद कौन ये करेगा, पास करना है। सब ने साइन कर दिया, पास हो गया। फिर दादी ने गवर्नर को बुलाया, नहीं फाउंडेशन स्टोन आपको डालना है। वो आ गया, फाउंडेशन स्टोन डाला, गया। एक साल में दादी उनको बुलाई कि आइए इसका उद्घाटन करिए। वो एक साल में आकर के हैरान हो गया कि ये खंडहर में दादी आपने कैसे बनाया 1000 इंजीनियर, पैसे पर नहीं, जो यज्ञ में इंजीनियर सेवा करते सर्विस करते थे वो छुट्टी लेकर के आकर के रहे, कंट्रैक्टर सारे लेबर बाहर से केवल थी, और एक साल में ये बिल्डिंग बन गया। कहीं एक पेड़ काटा नहीं गया, पेड़ था ही नहीं, काटने की बात ही नहीं थी। वो यहां गांव वाले पेड़ को इतने टहनियां और पत्ते काट करके अपने जानवर को खिला दिए थे, पेड़ ही नहीं था। जब आकर के गवर्नर देखा तो बोला कि दादी ये क्या किया, यहां तो कुछ नहीं था, यहां तो आपने मॉल बना दिया, कहां से पैसा लाए? तो दादी का विजन था ना। तो दादी ने कहा कि सारे सेंटर पर प्रोग्राम दे दिया कि रोज 1-1 रुपया डालो ज्ञान सरोवर के लिए। हर बच्चे मुरली सुन करके 1 रुपया डाल करके जाते थे। 10 लाख 5 लाख ब्राह्मण थे, 5 लाख रोज रुपया आता था, ये बन गया। रात दिन हमारे बच्चे हमारे भाई बहन खड़े थे। मैंने दादी को काम कराने का ये था, दादी को विजन आता था, लेकिन दादी इतना निर्माण थी कि कभी नहीं कहती कि दादी का ये विचार है या मैं बोलती हूं। मैं तो उनके शब्दों में नहीं था, दादी बोल रही है। मीटिंग करती थी तो बोलती कि दादी को बाबा सोने नहीं देता था, खड़े हो जाता था, बेटी उठो ये काम करना है, मैं क्या करूं, बाबा ये प्रोग्राम दे के गया है। कभी ये नहीं कहती थी कि मेरे को दादी ने ये, मैं कह रही हूं ये काम करना है, नहीं बाबा ने कहा है ये करना है। अपने को कभी आगे नहीं किया, कभी भी नहीं। यहां संत सम्मेलन हुआ पहली बार पांडव वन में, तो संतों को मगरूरी तो होती है, मैं बड़ा हूं, मेरा आसन बड़ा होना चाहिए। अब संस्था में तो एक जैसा आसन लगा दिया गया, अब वो आकर के नाराज हो गया, नाराज होकर के स्टेज से उठ के चला गया रूम में। भाई स्वामी जी क्यों चले गए? आ तो नाराज हो गए कि बड़े हैं और उनका कुर्सी ऊपर नहीं किया गया। जगदीश भाई गए, बहुत रिक्वेस्ट किए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप लोगों को किसी के इज्जत देने नहीं आता है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जगदीश भाई आके दादी को बोले, दादी स्टेज से गई सुखधाम में, कहती है कि स्वामी जी आपकी छोटी बहन दादी आई है। स्वामी जी ने दरवाजा खोला, जगदीश भाई के टाइम में खोला ही नहीं। और दादी कहते कि माफ करिए, स्वामी जी उठ करके आ गया, दादी आई है। इतना निर्माण, पहली बार ये संत आए थे हमारे प्यूरिटी को ये कर जांचने के लिए। हम लोग सो जाते थे तो वो संत लोग आकर के चारों तरफ घूमते थे, वाइब्रेशन लेते थे, सचमुच ये प्यूरिटी को मेंटेन कर रहे हैं। वो जाते जाते अनुभव सुना के गए कि दादी हम लोगों ने कितना इंक्वायरी यज्ञ का किया है, आपको पता नहीं था। दादी दीदी वो रात को जैसे बच्चे सो रूम में जाते हैं तो पूछने जाती है, अरे भाई दूध पिए हो, खाना खाए हो? संत लोग पानी पानी हो जाते थे। ऐसा तो माँ भी नहीं पूछी थी कि आप भोजन ठीक से मिला है, आपको गर्म दूध मिला है नहीं मिला है, कुछ चाहिए गर्म ठीक है, और भी आपको रजाई चाहिए, कंबल चाहिए? इतना प्यार, इतना मगरूरी था, दादी ने अपने प्यार के बंधन में पिघला दिया। और जब वो लोग गए तो एक एक ने अनुभव सुनाया कि दादी हमारे आश्रम को चलाने के लिए आप यहां से भाई बहनों को भेजो, डिसिप्लिन क्या होता है वो आकर के हमारे आश्रम को संभाले। ऐसे दादियां इतनी मेहनत किया है, इसीलिए बाबा अव्यक्त बाप दादा दादी को बहुत रिगार्ड देते थे। दादी कहेगी कि नहीं आज बाबा को आना है, भले सीजन नहीं है कुछ नहीं है, बाबा आता था और बोलता था कि मुरबी बच्चों को बाबा रिगार्ड देता है। मुरबी बच्चा, दादी इतना ये थी। ब्रह्मा बाबा उनको कुमार का बोलते थे, कुमारों की ये कुमार का है। इतना प्यूरिटी में दादी स्ट्रांग, कहां भी बाबा भेज देते थे अकेले, कोई ब्राह्मणी नहीं कोई कुछ नहीं, दादी अकेले जाकर के काम करके आ जाती थी। इतना बाबा के प्रति रिगार्ड, कभी ना नहीं कहा होगा बाबा ये मेरे से नहीं होगा, तो बाबा भी इतना रिगार्ड देते थे। लास्ट के दिनों में बाबा दादी को मना करते थे, नहीं इतना सेवा नहीं करो, यहां नहीं जाओ। नहीं बाबा ठीक है। दादी इतनी ये थी, एक एक का ध्यान रखती थी। आज इतनी कन्याएं निकली, एक एक कन्याओं का ध्यान रखती थी, एक एक कन्याओं से मिलती थी, बात करती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, प्रेस वाले बोलते थे दादी इतनी कन्याओं का आपने समर्पित किया है, क्या आपको इतनी कन्याओं की समस्या तो होगी ना, तो आप समस्या सुन करके आपको हेडेक नहीं होता है? दादी बोलते थे नहीं ये मेरी कन्याएं है ही नहीं, ये शिव बाबा की कन्याएं हैं और ये हमारे को रिफ्रेश करती है, हमारे को कोई हेडेक होता ही नहीं है। ये कुछ बात सुनाई, हमने सल्वेशन दिया और हम रूम में गए, सिर तकिए पर रखा, एक मिनट में खुराटे आने शुरू हो गया। लोग हैरान होते थे, इतनी दादी में, दादी जहां जाती थी, विदेश गई 74 में फर्स्ट टाइम, और जाकर के इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया। जयंती बहन सुनाती है, फर्स्ट टाइम, रहने का स्थान नहीं है, दादी लेक्चर देके आती है, जयंती बहन और ये दोनों विदेश में जाते थे, और आकर के एक छोटा सा रूम, जयंती बहन को कहती थी कि जयंती आज ये बनाना है, चलो मिल करके हम लोग बनाते हैं। दादी बनाती थी और जयंती दीदी और वो दोनों भोग लगा करके भोजन करते थे, क्योंकि सेवा सेंटर नहीं था। दादी ने हर जगह जाकर के खोला लोगों को, पहले अमेरिका में चंद्रू बहन, जयंती बहन ये गए थे, और यूएनओ में गई दादी, ले गए घुमाने के लिए, तो दादी यूएनओ को दृष्टि दिया और कहा कि सभी देश के झंडा यहां दिखाई दे रहा है, बाबा का झंडा नहीं है, एक दिन आएगा बाबा का यहां झंडा लगेगा। दादी वरदान देकर आई और दूसरे साल यूएनओ में हमारा ऑफिस खुल गया और आज भी वो ऑफिस चल रहा है। दादी वरदानी थी, इतना दादी ये थी, उनको विजन आता था, कभी नहीं कहा कि मैं कहती हूं। मीटिंग में हमारे बहुत सारे डिस्कस होता था, लेकिन दादी एक शब्द में सबको, जहां किसी बात में डिबेट होता था, दादी बोलती थी नहीं इसको पोस्टपोन करो, बाद में देखेंगे, इसको नहीं करना है, दो मत हो गई इसको नहीं करना। कभी भी कोई भी इसमें दो मत होने नहीं देती थी। एक भाई सुनाता है, दादी दिल्ली में गई, एक भाई बहुत इंसल्ट किया, बहुत किया, मैंने बहुत किया, और वो चला गया अपने रूम में, समर्पित भाई। भोजन दोपहर को करके दादी रेस्ट में चली गई, शाम को उठी तो भाई सामने दिखाई दिया, बोला कि भाई चाय पिए हैं, चलो दादी के साथ चाय पियो। देखो इंसल्ट करने वालों को तो आदमी को नफरत हो जाती है ना, ये क्या समझा है, दादी इतनी बड़ी है और इसका इंसल्ट किया है, इसे बात नहीं करेंगे। लेकिन दादी इतनी नम्र, वो भाई को बोलती है सामने से गुजरा, भैया आपने चाय पिया है? नहीं। तो चलो मेरे साथ, दादी के साथ चाय पियो। वो भूल गई ये इसने क्या कहा, नहीं तो हम लोग गांठ बांध कर रख देते ना, इन्होंने ये कहा, भूलते नहीं है, कैसे भूलूंगा, इतनी गहरी बातें इन्होंने कह दिया, कैसे भूलूंगा। लेकिन दादी हर बातें समा लेती थी, पी लेती थी। यज्ञ में हम लोग जाते थे, कुछ ये होता था तो दादी बोलती थी, आप लोग आते हो अपनी बातें सुना करके हल्के होके जाते हो और दादी के पास समस्या नहीं आती है, दादी किसके पास हल्के होने के लिए जाए। हम छोटे थे तो दादी समझाती थी कि नहीं भारी नहीं होना है। मान लीजिए कि आपकी कंप्लेन दादी को कोई करके गया है कि दादी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, दादी ने सुन लिया, लेकिन दादी को भी तो विवेक है कि ये हमारे वर्षों से मेरे साथ काम कर रहा है, तो क्या दादी उसी के कहने पर आपकी डिसीजन लेगी, अपने विवेक यूज नहीं करेगी। आप क्यों डर गए, क्यों घबरा गए, क्यों आंसू आ गया, दादी बुलाई क्या? ठीक है, दादी का काम है सबका सुनना, उसे सुना के चला गया, दादी को जरूरत होगी तो बुलाएगी, नहीं जरूरत होगी तो ऑब्जर्व कर रही है कि इसने जो कहा है उसमें सचमुच है या नहीं है, दादी तो भी ये करेगी। इतनी दादी ध्यान देती थी, इसलिए सारा यज्ञ दादी 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 करता है। सेंटरों पर भी जाती थी, एक बार हम लोग महाराष्ट्र में गए, एक सेंटर आया, छोटा सेंटर था, बोली कि अच्छा यहां अपना सेंटर है चलो। हम लोग तीन चार थे, वो बहन देख करके दादी को घबरा गई, यार दादी आई दादी आई। वो दादी से मिले वो उसके आंसू आने लगे, समझ नहीं सकती थी मेरे यहां भी इतने छोटे सेंटर पर दादी आएगी। दादी वो मतलब दादी समझ गई कि ये प्यार में इसको कुछ दिखता नहीं है, बोली कि तुम यहां बैठो, तुम्हारा किचन कहां है, और वहां जाकर के बोला कि आटा कहां है, ये कहां है, वहां नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। दादी मैं बना रही हूं, बैठो तुम शांति से। दादी नाश्ता बनाया, सबको खिलाया, खा करके हम लोग फिर आगे के लिए चले गए। इतना निर्माण, किसी को बुलाने नहीं दिया, माताओं को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको नहीं, चुप बैठो। माने दादी जितनी बड़ी थी उतना ही निर्माण थी, और सबसे मिलनसार थी। कोई डॉक्टर आते थे, दादी कितना भी बिजी होती थी, हम बोलते फलाना डॉक्टर आया है, बुलाओ बुलाओ, चलो मिलेंगे। हॉस्पिटल में कोई पेशेंट होता था तो ओम शांति भवन से मुरली चला करके मेरे को बोलती थी, तो मेरे साथ आ जाना। गाड़ी में बैठती थी तो बोलती थी मेरी गाड़ी में बैठ जा, और दादी बोलती थी नहीं पहले पेशेंट को देख कर आएंगे फिर हम पांडव भवन में जाएंगे, क्योंकि एक बार पांडव भवन में चली गई तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, चलो पहले पेशेंट को देखते हैं। इतना दादी को प्यार था, दादी को विजन आता था कोई बीमार है। एक बार की बात है, एक रात को पहरा देने वाला भाई पंडित बीमार था, दो दिन से पहरे पर दिखाई नहीं दिया। मेरे को बुला करके कहा नाश्ते पर कि देख कर आओ, वो दो दिन से आया नहीं है, बुखार तो बीमार तो नहीं है। मैं गया, 104 डिग्री टेम्परेचर में वो कांप रहा था। मैं उसको यूडीकोलन ले गया, बर्फ का पानी ले गया, दवाई ले गया, उसको एक घंटा में उसको फीवर को नॉर्मल करके, और फिर आकर के दादी को बोला। दादी बोली कि देखो उसकी याद आ रही थी, दादी को विजन आता था, परिवार है ना, हमारे को रोज बुलाती थी नाश्ते पर, समाचार सुनाओ कौन बीमार है, कौन किसको क्या तकलीफ है। मैं रोज जाता था, मुनि बहन एक दिन मेरे को आंख दिखाई, क्या रोज तुम नाश्ते पर आ जाता है, बीमारी की बातें करता रहता है, कल से नहीं आना है। तो दो दिन मैं नहीं गया तो दादी बुलाई, दो दिन से तुम नहीं आया। अब मुनि बहन वहां सामने खड़ी है, मैं कैसे कहूं कि मुनि बहन ने मना किया है। तो दादी समझ गई कि इसने मना किया होगा, तो दादी कहा कि मुन्नी जब तक ये समाचार नहीं सुनाएगा तब तक हम नाश्ता नहीं करूंगे। हमारा परिवार है, कोई बीमार है उसको, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं हो, उसको मैं जाकर देखूं नहीं, तो दादी किस लिए है। तो रोज दादी यज्ञ का कौन बीमार है क्या है समाचार लेती थी, छोटी छोटी बातें। एक बार हम सन्यासियों की सेवा करके आ रहे थे दोपहर को, कहानी लंबी है समय होता जा रहा है, तो दीदी दादी 3 बजे उठकर भोजन करके 100 कदम चलती थी पांडव भवन के आगे। हम आ रहे थे अकेले, सामने दीदी दादी यीशु दादी 3 मूर्तियां। अब मैं छुपू तो कहां छुपू, क्योंकि सामने सामने रोड है, कोई ये जगह नहीं है। दादी बोलती है कहां से आ रहा है, बोला कि फलाने सन्यासी के पास से आ रहे हैं। क्यों गया, अब तो यहां हम शाम को मधुबन वाले योग कर रहे थे, सबने कहा कि सन्यासियों की सेवा होनी चाहिए, तो हम बोल हाथ उठाया और हम तब से जा रहे हैं 1 सप्ताह से। तो दीदी बोलती है, पहले दादी बोला कि क्या ले गया था, हम कुछ नहीं ले गया था। तो दादी बोली कि आज के बाद कभी भी बड़ों के पास सन्यासी के पास किसी के पास जाओ तो टोली लेके जाओ, टोली नहीं मिलता है तो कुछ फल लेके जाओ, वो भी नहीं मिलता है बगीचे से एक गुलाब के फूल तोड़ करके लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाना है। वो दिन और आज दिन किसी के पास जाते हैं तो बिना टोली के नहीं जाते हैं, चाहे वो सेंटर हो या कुछ भी हो। एक एक चीज दादी ने सिखाया यज्ञ क्या होता है। और दीदी बोलती है, दीदी तो बहुत कड़क थी, किस से छुट्टी लिया, मुझे भाई लोगों ने कहा तो क्या सुना, और तो दीदी बहुत वो लोग उल्टा सुलटा बोलते थे, तुम क्या जवाब देता था? और तो हम सुनते रहते थे और उनको लास्ट में कहते थे, स्वामी जी आप कभी पांडव वन गए हैं? तो बोलते थे कि क्या मार खाने में जाऊंगा, वहां तो सन्यासियों को मारते हैं, मैं मार खाने जाऊंगा? हाँ आप चलोगे आपके साथ मैं चल सकता हूं। तो दीदी बोली कि सब को ला सकता है? हाँ दीदी वो लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। यही मास था, राखी का दिन था, दादी दीदी ने मेडिटेशन हॉल में उनका ब्रह्मा भोजन रखा, गर्म पानी ठंडा पानी टावेल सब कुछ बड़ा इंतजाम किया। अब वो संत सारे भोजन करके तो बड़े खुश हो गए, जो गालियां देते थे, जो जिन्होंने दीदी दादी को देखा नहीं और उनके लिए गाली देते थे, यज्ञ के लिए गाली देते थे, अब दादी दीदी ने इतना ये किया सब पिघल गए। तो हमने कहा कि दादी एक और इनकी ये होती है, ये इनको पैसा नहीं देंगे, दांत घिसाई बोलते हैं, वो पैसा नहीं देंगे तो फिर ये नाराज हो जाएंगे। तो दादी बोली कि यज्ञ का नियम नहीं है यज्ञ से हम किसी सन्यासी को पैसा दें। तो एक सेठ आए थे, पक्का बाबा के बच्चे थे, बुरहानपुर के गोवर्धन भाई, केला का उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। तो उनको बुलाया तो बोला कि हाँ दादी ये तो काम हम रोज करते रहते हैं, मैं दूंगा। उन लोगों को सौगात दिया, वो गोवर्धन भाई एक लिफाफा पकड़ाया, इतने सब खुश होकर के गए कि जो भी कुछ अगर उनके यहाँ कोई आता था मेहमान तो पांडव भवन में लेके आते थे, म्यूजियम लेके जाते थे। एक बार की बात है कि वो सन्यासी, एक सन्यासी गौमुख वाला, 180 एकड़ जमीन है उसने, हम तीन भाइयों के नाम से वील कर दिया और वील का पेपर हम बड़े खुश होकर के दादी को दिया कि दादी 180 एकड़ जमीन यज्ञ को मिल गया, ये वील पेपर है। दादी बोली कि क्या किया, सन्यासियों का धन मुझे लेना है, सन्यासियों को मदद किया जाता है, मुझे धन नहीं चाहिए। और आबू में हलचल मच गई कि सन्यासियों का धन, ये ब्रह्मा कुमारियों ने 180 एकड़ जमीन ले लिया। और दादी एक सेकंड में बोला कि नहीं ये लौटा करके आओ, और लौटाने गए तो सन्यासी रोने लगा। हम बोला कि महाराज जी रोइए नहीं, दादी से बात करिए। उसके पास टेलीफोन था, दादी को टेलीफोन किया, दादी ने कहा महाराज जी ये बच्चे आपकी सेवा करेंगे लेकिन आपका धन मुझे नहीं चाहिए, वहां मंदिर को कौन पूजा करेगा, हमारा तो कोई नियम ही नहीं है कि कोई भाई को बैठाए कोई बहन को बैठाए मंदिर में पूजा करने के लिए, मुझे नहीं चाहिए 180 एकड़ जमीन गौमुख का। दादी एक सेकंड में लौटा दिया। फिर सारे मार्केट में ये फैल गया, अरे ब्रह्मा कुमारी दादी को कितना त्याग है, 180 एकड़ जमीन एक सेकंड में उन्होंने लौटा दिया, कितना रिगार्ड बैठ गया। तो मतलब दादी को विजन आता था, बड़े बड़े लोग आते थे दादी से मिलते थे, दादी की अपनी पर्सनालिटी। हमारे डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस होता था, दादी इतनी अच्छी लेक्चर देती थी और बोलती थी कि डॉक्टरों की बहुत अच्छी महिमा करती थी, लेकिन कहती थी बड़े प्यार से कि दादी को एक बातें डॉक्टरों की अच्छी नहीं लगती है। सुनाऊं? आप लोग कहो तो दादी सुना सकती है, लेकिन आप परमिशन देंगे तो। दादी के बोलने का स्टाइल अपना था, सारे डॉक्टर पिघल जाते थे स्नेह में पावर में, बोलते थे जी दादी आप जो कहेंगे डॉक्टर हम सब मानेंगे। अतः तो जो डॉक्टर ये खाते पीते हैं ना दादी को पसंद नहीं है, इतना सेवा करते हो, सेकंड गॉड समाज मानती है, ये सेकंड गॉड का ये भोजन क्या होता है, ये नहीं कहते थे मांस मदिरा, बड़ा रॉयल भाषा करते थे, खाते पीते हो ना वो दादी को पसंद नहीं है। कौन कौन नहीं खाएगा पिएगा हाथ उठाए, सब हाथ उठाते थे भाई अब आज से हम नहीं खाएंगे पिएंगे। तो इसलिए थोड़ी नशा मुक्ति पर हम 5-10 मिनट आपको बताएंगे। तो आज दादी के 19वां पुण्यतिथि है, हम 19वां पुण्यतिथि पर इस बार हम लोगों ने मीटिंग में हमने कहा 10 करोड़ लोगों से प्लेज लेने लेना है 19वां पुण्यतिथि पर। हम आज तक फल फूल चढ़ाते आए हैं दादी जी के पुण्यतिथि पर, गुलाब के फूल अर्पण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। इस साल हमारी हम सबकी श्रद्धांजलि होगी कि हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे, हम अपने शहर को नशा मुक्त बनाएंगे, हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दादी जहां भी होंगे वो दुआएं देंगे कि हमारी बात को आज हमारे बच्चे हमारे भाई बहने उसको कर रहे हैं। तो दादी की ये इस 19वां पुण्यतिथि पर 10 करोड़ लोगों से ये करने का ये अभियान चला है। क्यों? क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। भारत युवाओं का देश है और यहां 65% युवा होते हैं। जो युवा व्यसन में चले गए हैं छोड़ दीजिए, जो बचे हैं रोज के 5,500 युवा व्यसन में जा रहे हैं। हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर एक तरफ सपन देख रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा और युवा व्यसन में चले जाएंगे, रोज के 5,500 युवा व्यसन में जा रहे हैं, तो एक दिन भारत क्या होगा? विश्व गुरु कौन बनेगा? शराबी बनेगा शराब पी करके? नहीं। तो उन युवाओं को बचाने के लिए दूसरा किसी के पास पावर नहीं है। बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी को जो पावर है वो दूसरे किसी के भी पावर नहीं है। लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है? 10%, 20%, 30%। ब्रह्मा कुमारी को 97% रिजल्ट मिलता है। बहुत सरकार रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करती है, क्योंकि एक डॉक्टर को 1-1.5 लाख सैलरी देना पड़ता है। साइकेट्रिक बड़ा डॉक्टर रखा है, बड़ा फिजिशियन रखा है। लोग शराब पी करके वहां जाते हैं, 6 महीना 3 महीना रखते हैं, ठीक करके भेजते हैं, 6 महीना में पी करके वहीं आ जाते हैं। कोई रिजल्ट नहीं है। और कोई भी ब्रह्मा कुमार एक बार वो शराबी था और बाबा का बच्चा बन गया, वो आज 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, दोबारा लौटकर शराब को टच नहीं किया। तो जब भारत सरकार को ये पता लगा तो भारत सरकार के सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट उनके चीफ सेक्रेटरी दादी जी को पत्र लिखता है, दादी जी आप भारत को नशा मुक्त बना रहे हैं और भारत सरकार भी भारत को नशा मुक्त बना रही है, हम आपके साथ एमओयू करना चाहते हैं। एक दिन था अव्यक्त बाप दादा कहते थे कि बच्चे आप लोग इतनी सेवा करते हो और ये सरकार के पास रिपोर्ट नहीं जाती है, आप सब मिल करके एक बुक बना करके सरकार को दो, हम लोग बाबा के आज्ञा को मान करके सरकार के बुक बना करके दिया, सेक्रेटरी पढ़ करके अपने फाइल में दबा दिया। आज वो दिन है, एमओयू हुआ 2023 में और नारकोटिक डिपार्टमेंट जो होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है 2024 में हुआ और आज तक 4 करोड़ लोगों से पहुंचे हैं। और रोज रोज की सेवाएं सरकार के इंस्टाग्राम फेसबुक मीडिया में जाता है, सारी दुनिया देखती है कि ब्रह्मा कुमारी क्या सेवा कर रही है। 36 रथ बनाया गया है, पूरे भारत में घूम रहा है, पूरे भारत में सेवा हो रही है। इसलिए संकल्प चला कि नहीं, इस साल कुछ ऐसा करके दिखाया जाए कि बाबा का जयकार हो। 10 करोड़ करेंगे तो सरकार भी अभी तक 10 करोड़ नहीं किया है, विदेश में भी कोई एनजीओ नहीं किया है, भारत में भी कोई एनजीओ नहीं किया है। कितना किया है? 1-2 लाख तक पहुंचा है, इससे ज्यादा नहीं पहुंचा है। और एक ब्रह्मा कुमारी ही संस्था है 4 करोड़ तक पहुंची है और भी 10 करोड़ तक संकल्प लिया है। पूरे विश्व में तहलका मच गया है, हर गली गली में एक ही है, ब्रह्मा कुमारी 10 करोड़ लोगों से प्लेज ले रही है। मोदी जी का जो ये था उसमें हम सभी जगह हमारी सफेद ड्रेस होता है, आप लोगों ने देखा होगा उनका प्रोग्राम, जगह जगह सफेद ड्रेस का ऐसे झुंड दिखाई देता था। मोदी जी ये करते थे, उन्होंने इनडायरेक्ट बोला ऐसी भी संस्थाएं कि इनकी जहां कहां कहां शाखाएं हैं वो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि नाम लेंगे तो फिर तो दूसरों को भी ये करना पड़ेगा। तो ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है। हम सब संकल्प लें कि हम अपने सेवा स्थान पर जाएं, घर जाएं, तो 20 तारीख के पहले हमारे एरिया में कोई स्कूल न रह जाए, कोई यूनिवर्सिटी न रह जाए, कोई हॉस्टल न रह जाए, सभी जगह जाकर जेल न रह जाए। जेलों में भी 1500 कैदी होते हैं, वहां जाकर के भी प्लेज लेना है। कोई पब्लिक प्लेस रह न जाए, और 10 करोड़ के बदले हम 21 करोड़ करके दिखाएं, बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी, ब्रह्मा कुमारी की प्रत्यक्षता हो जाएगी। जो ब्रह्मा कुमारी करती है वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। तो आप लोग चाहते हैं, इतना तपस्या करते हैं तो तपस्वियों का तो वचन आज साधु सन्यासी डस्ट उठा करके राख डस्ट ही होता है ना, वो दे देते हैं, लोगों को फायदा हो जाता है। ये तपस्वी कुमार कुमारी, ये बाबा के बच्चे प्रवृत्ति में रह करके निवृत्त उसे परे हो करके घर को आश्रम बनाने वाले, घर को मंदिर बनाने वाले, अपने को सदा बाबा के साथ रखने वाले, भगवान को अपने पास रखने वाले, उनके बिना पानी भी नहीं पीते हैं, पानी पीते हैं तो बाबा को बुलाते हैं, बाबा एक सिप ले लो ये अमृत हो जाएगा, करते हैं या नहीं करते हैं। भोजन आता है कितना भी जल्दी होगा, नहीं बाबा पहले आप स्वीकार करो। भगवान को अपने साथ रखने वाले, क्या उनकी बात सच नहीं होगा? सच होगा। हम सब मिलकर के आज संकल्प लें कि भारत को नशा मुक्त बनाएंगे, अपने शहर को नशा मुक्त बनाएंगे। तो एक मिनट के लिए खड़े होंगे, माफ करना खड़ा करा देते हैं आपको। अपना दाहिना हाथ सामने रखें और हम सब संकल्प करें, ये बाबा की प्रेरणा से बनी हुई ये धरनी है, भगवान की रात को बात कर रहा है दादी से और दूसरे दिन ये जमीन वाले आकर के ऑफर कर रहे हैं। कौन करा रहा है? भगवान करा रहा है ना, बाबा करा रहा है ना, श्री बाबा की धरनी है। क्या इस धरनी पर बाबा के बच्चे संकल्प लेंगे? पूरा नहीं होगा, होगा पूरा 100% होगा। तो आज हम सब संकल्प लें, मैं परमपिता परमात्मा
शिव बाबा
बाप दादा
दादियों के सामने
प्रतिज्ञा करती हूँ
कि
भारत को नशा मुक्त बनाएंगे अपने शहर को नशा मुक्त बनाएंगे
अपने घर को नशा मुक्त बनाएंगे
मेरा भारत जरा जोश में हाथ उठा करके कहिए, मेरा भारत नशा मुक्त भारत मेरा शहर नशा मुक्त शहर मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार ओम शांति। अब यहाँ से जब भी जाएं, बाबा के शक्ति लेकर के पहला यही करें कि कोई स्कूल रह न जाए। हर स्कूल में प्रेयर होता है, प्रेयर के समय जाएंगे तो सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, उनसे प्लेज लेकर के 10 मिनट में 5000 2000 2500 500 बच्चों को प्लेज लेकर के आप आ जाएंगे। बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कल किसने देखा है? आज दुनिया का हालात कैसी है? एक एक मिनट में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो ये बाबा ने गोल्डन चांस हम बच्चों को दिया है। बाबा तो प्रत्यक्ष होना ही होना है, लेकिन उसमें हम सबका अंगुली लगेगा। गोवर्धन पर्वत अकेले कृष्ण उठा सकता था, लेकिन गोप गोपियों को सहयोग लिया। तो मेरा भाग्य होगा कि हम सेवा करके इस प्रोजेक्ट में अपना भाग्य बनाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति।